नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी अपने जीवन में खुशी को बहुत आनंदित रूप से देखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी बाल्यकाल में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है या बड़े होने के बाद भी कुछ भूल हो जाती है, जाने अनजाने में गलती हो जाती है। उसका प्रभाव हमारे मानस पटल पर बहुत अंकित हो जाता है, चाहकर भी हमें खुशी नहीं मिल पाती है। आखिर इसका कारण क्या है? चाहते तो हैं हम सदैव जीवन भर खुश रहें, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां तब प्रभाव कर देती है कि वो जीवन भर उसका प्रभाव रहता है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बातों से कैसे हम मुक्त होकर के एक जीवन को नया सफर की ओर ले जाए, सुहाना बना ले। भाई जी, संजय भाई, गीता बहन, आप तीनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गीता बहन जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ कि प्रायः आज हम देखते हैं कि लोग कुछ अपनी गलतियां बाल्यकाल में अगर हुई है, किसी के संग में आने से हुई है, जाने अनजाने में हुई है, भले वो बहुत उच्च पदों पर आसीन हो गए हों, आगे निकल गए हों जीवन की यात्रा में, लेकिन उसका प्रभाव रहता है, एक मानसिक दबाव रहता है। आखिर कारण क्या है?
कोई भूल ऐसी हो जाती है जो हमें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कचोटती रहती है
जी।
भूले होना स्वाभाविक सी घटना है। वैसे भी कहा गया है ना कि इंसानों से ही भूल होती है, जानवर तो भूल नहीं करते हैं। भूले हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भूलों को स्वीकार कर लेना कि ये मेरे से भूल हुई है, इसे स्वीकार कर लेना, ये बड़ी बात है। और जिस दिन मुझे मेरी भूल समझ में आ जाती है, उस दिन वो भूल खत्म हो जाती है। कई लोग इग्नोर करते रहते, ये तो चलता है, ये तो होता है, ऐसा तो होता ही रहता है,
उसको लाइटली ले लेते हैं।
तो कभी आपने सुना कि कोई व्यक्ति पहाड़ से ठोकर खा के गिर गया? नहीं ना। छोटे छोटे पत्थर रोडों से ही ठोकर खा के इंसान गिरता है। अगर हम इन छोटी छोटी भूलों को महत्व नहीं देंगे, इनको इग्नोर करते रहेंगे, तो ये छोटे छोटे रोड़े ही एक दिन दुखों का पहाड़ बन जाएंगे हमारे सामने। तो जो छोटी छोटी भूलें भी हमसे हो रही हैं, हम उन्हें गहराई से लें, समझदारी से लें, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें खत्म करें। बात है केवल ईमानदारी से उन भूलों को समझने की, स्वीकार करने की। रही बात की जो भूल हमारे से जाने अनजाने में हो गई, बालपने में हो गई और उसमें हम बाद तक जलते रहते हैं, तो वही बात मैं कहना चाहूंगी कि जो हो गया सो हो गया, उनसे आप अच्छी सीख ले लो और आज को उन भूलों से बचा लो। दोबारा वो भूल मेरी लाइफ में रिपीट ना हो, और मेरा ये प्रयास रहे कि जो मेरे आसपास लोग हैं उनको भी मैं उन भूलों से बचाऊं, अपने अनुभवों के आधार पर अपना पूरा सहयोग दूं, अपनी उस सीख के आधार पर, क्योंकि मुझे तो अनुभव हो चुका है कि नीम कड़वा होता है, गुड़ मीठा होता है। तो अगर कोई नीम का टेस्ट लेना चाह रहा है तो एक बार उसे अवगत जरूर करा दे, अपने अनुभव से अवगत जरूर करा दे कि ये कड़वा होता है, और अपनी भूलों से सीख कर आज को बचा ले। जो कल बीत गया उसकी चिंता ना करे, आज को बचा ले, कल अपना आप अच्छा हो जाएगा, जिसकी चिंता ना करें।
जी जी जी।
कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ गलत डिसीजन हो जाते हैं, उस पर हम उम्र भर पछतावा करते रहते हैं। जैसे आजकल देखिए, कुछ लव मैरिज हो रही है, माता पिता बहुत समझाते हैं कि नहीं, यहाँ तुम खुश नहीं रहोगे, लेकिन कर लेते हैं। उस समय जोश इतना होता है कि होश खत्म हो जाता है, और फिर पता पड़ता है कि 4 ही महीने के अंदर दरारें पड़ गई, जीवन नरक तुल्य बन गया, अब दोनों कट्ठे साथ रहना नहीं चाहते, अब वो पछता रहे हैं कि हाँ हमने ये गलत डिसीजन कर लिया, पूरी उम्र के लिए सिरदर्दी हो गई, अब इससे हम कैसे बाहर निकले। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे रोंग डिसीजन हमारे एम के, हमारे लक्ष्य के आगे आ जाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत कुछ भुगतना भी पड़ता है, जो हमारी सुख शांति समृद्धि पर तो प्रभाव डालता ही है, लेकिन हमारी खुशी पर भी प्रभाव डालता है। युवा है, उसको स्टंट करने का बड़ा शौक था और उसका एम था, जैसे ही उसने होश संभाली, उसका पूरा परिवार आर्मी में था, तो उसका शौक था कि मुझे आर्मी में जाना है, बहुत बहादुर, बहुत डेयरिंग वाला व्यक्ति था और उसका बहुत बड़ा लक्ष्य था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है बड़ा होकर के, एक ही गोल बचपन से जब से होश संभाली। लेकिन स्टंट करने का बड़ा शौक था उसको, कभी बाइक पर स्टंट करता है, कभी कहीं कभी कहीं। तो एक बार क्या हुआ, जब वो 20 साल का था, यंग एज में था, बाइक चला रहा था और चलाते चलाते उसने जबरदस्त स्टंट किया जिससे उसके पैर में बड़ी भारी चोट लगी, बड़ा भारी फ्रैक्चर हुआ। कई महीने उसको बेड रेस्ट पर रखा गया, पाव में जो है प्लेट्स डाल करके
उसका जो शौक था वही
हड्डी को छोड़
दिया।
हाँ, ये शौक अलग चीज थी, लेकिन उसको एक जो उसकी एक ये बात थी स्टंट करने की, घर वाले भी उसे रोकते थे कि तुम इसने ये खतरनाक स्टंट मत किया
करना नहीं,
उसके लिए जगह भी चाहिए होती है, तुम खुली रोड पर स्टंट कर रहे हो, कल कुछ भी हादसा हो सकता है। आजकल के युवकों को भी आप देखेंगे, कभी हम सड़क पर चलते हैं, गाड़ी में जाते तो हम घबरा जाते हैं, उतनी फास्ट से निकलते हैं बाइक लेकर के कि वो ये भूल जाते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन तुम्हारा पिता तुम्हारा परिवार इंतजार कर रहा है। वो ये भूल जाते हैं कि कल तुम्हारे साथ एक सेकंड में कोई भी हादसा हो सकता है, तो मैं एक संयम से एक बैलेंस से अपनी बाइक ड्राइव करूं। तो ऐसे ही उसने किया, ऑन रोड पर जो है स्टंट करने शुरू कर दिए। एक शौक होता है कि लोग हमें देखें, अब वो स्टंट उसको भारी पड़ गया, भारी फ्रैक्चर हो गया, लंबा समय जो है बेड पर रहा वो, तो उसका जो गोल था, उसका जो बचपन का लक्ष्य था, उसके आड़े आ गया। क्योंकि जब वो ठीक हुआ तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि एक पांव छोटा एक पांव बड़ा, आर्मी में तो उसकी एंट्री नहीं हो सकती थी, रिजेक्ट कर दिया गया। अब उसके गोल पर उसका स्टंट भारी पड़ गया, बहुत लंबे समय तक उसने बाइक को हाथ नहीं लगाया और पछताता रहा कि क्यों मैंने ये स्टंट किया, ये मेरा डिसीजन बहुत गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था, उकसावे में आकर दिखावे में आकर मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। जैसे निराशा के बादलों ने उसे घेर डाला, लेकिन पूर्व के कोई पुण्य का सूरज उसके जीवन में उदय हुआ, उसको पुनः एक चेतना आई और उसने अपने गोल को अपने लक्ष्य को वापस रीडिजाइन किया। वो वापस खड़ा हुआ और उसने कुछ ऐसा काम किया कि वो आर्मी की बड़ी कैंटीन का सप्लायर बन गया, बहुत बड़ा सप्लायर बन गया। आज आर्मी में भी है और आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स लोगों के साथ उसकी रोज मीटिंग होती है, रोज बातचीत होती है। आज वो अपनी लाइफ में पूरी तरह सेटिस्फाई है। कुछ समय उसे काले बादलों ने जरूर घेरा, कुछ समय उसे अपने किए पे पछतावा हुआ कि काश अगर मैं ये नहीं करता, मेरी टांग छोटी बड़ी नहीं होती, तो आज मैं बहुत बड़ा सोल्जर होता, सीमा पर होता, अपनी बहादुरी अपनी डेयरिंग दिखाया होता लोगों को। लेकिन फिर भी वो उससे बाहर निकला। अपने लक्ष्य को कभी कभी हमें रीडिजाइन करना पड़ता है। अगर कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में आ जाती है तो हम उसे पकड़ के ना बैठते हैं कि मेरा तो ये लक्ष्य था, खत्म हो गया, मेरे जीवन जीने का सभी मकसद खत्म हो गया। नहीं, हम फिर से खड़े हों, उसे रीडिजाइन करें और फिर से हम जो है आगे बढ़े, उस लक्ष्य को अचीव करें और आज वो पूरी तरह खुश है, हैप्पी है।
बहुत सुंदर बात भाई जी। जैसे गीता ने सुनाई कि कई बार हमारे जीवन में लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन छोटी मोटी बातें ऐसी आती है जो लक्ष्य से थोड़ा दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, बहुत महान हो, जिस लक्ष्य तक हम पहुंचना चाहते हो, तो ये छोटी मोटी बातों का परवाह कैसे ना करें, कैसे इन बातों को हम थोड़ा हल्का करें और अपने लक्ष्य के प्रति जागृत रहें।
ये कहानी सच्ची कहानी है
जी,
और ये कई सीख देकर हमें जाती है। बहुत सुंदर लक्ष्य बनाना बहुत श्रेष्ठ बात है, लेकिन गलत कार्यों में लग जाना युवकों का, ये घातक सिद्ध होता है। बड़े युवक बाइक के चलते हैं और एक्सीडेंट कर लेते हैं, तो उन्हें ये एक सुंदर बैलेंस रखना चाहिए। समझदारी और बुद्धिमानी की बहुत आवश्यकता है जीवन में, ये सीखना है। यदि एक लक्ष्य नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन और भी है। इसलिए ये कहानी हमें सिखाती है, प्रेरित करती है कि कभी निराश होने की जरूरत नहीं। हमने सुना है एक एक टांग के लोग एवरेस्ट पे चढ़ गए
जी,
बिना पैरों के, बिना हाथों के व्यक्ति, युवक लड़के जिसके दोनों हाथ कट गए थे, पैरों के द्वारा अच्छी पेंटिंग करने लगे। वो मतलब टॉप क्लास पेंटर बन गए, उनकी पेंटिंग करोड़ों में बिकने लगी। निराश न होना, नया ऑप्शन ढूंढ लेना
जी,
ये परम आवश्यक है हमारे सभी युवकों को, बड़ों को भी। ये नहीं तो ये तो है ना, जैसे मान लो हमें नहीं जाना है, बहुत सुंदर सड़क है
जी,
लेकिन अचानक सड़क के बीच में बड़े बड़े गड्ढे आ गए, अर्थक्वेक हो गई। अब मनुष्य घर बैठा रहे, अब तो सड़क से जा नहीं सकते, लेकिन ऑप्शन तो है ना कि वहां तक बाइक ले चलो, फिर इधर को मोड़ के धीरे धीरे बाइक निकाल के फिर अच्छी सड़क है आगे चले जाना। बाइक नहीं चलो, अच्छा ये बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ हो गया है, पैदल इसको पार कर लो, उधर बाइक लेके चले जाना। ऑप्शन ढूंढना चाहिए, निराश नहीं। जैसे मेरे पास कई माताएं आती हैं, तो माताएं कहती हैं कि हमारा लड़का बिल्कुल पढ़ता नहीं, हमने कोशिश कर ली, मारपीट कर लिया, ट्यूशन लगा दिया, बहुत प्रयास किया, पढ़ता नहीं। मैंने कहा और क्या करता है? क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है। मैंने कहा तो छोड़ो ना, कहां पर हमारे दो हमारे लोग डॉक्टर हैं, हमारे परिवार से एक चीफ इंजीनियर है, हमारे परिवार से ये हैं वो हैं, ये पढ़ेगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे? नहीं, ये ऑप्शन है, इसके लिए बढ़ने दो इसको। और आजकल देख नहीं रहे 18 साल के लड़के, 20 साल के लड़के कितना नाम और कितने उनके।
लेकिन हर माँ बाप चाहता है भाई जी कि मेरा बच्चा आगे चल करके बहुत पढ़े।
हाँ, लेकिन यदि उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है तो पढ़ाई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जो भी उसकी रुचि हो, जो उसके अच्छे टैलेंट्स हो, उनको यूज करके उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए।
उसको भी पहचानना आवश्यक है कि इसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या योग्यता है।
अपनी ही बात लेके उस पे दबाव बनाए रखना ये हितकर नहीं है। दूसरी बात, मैं पश्चाताप की कर रहा हूँ। वैसे भारतीय हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी ये बात है, किसी ने गलती की पश्चाताप कराते थे उससे, भाई उस गलती का इफेक्ट खत्म हो जाए। लेकिन वो तो अच्छी बात है, पश्चाताप करने का अर्थ है रियलाइज करना, आगे वो गलती रिपीट ना हो, ये दृढ़ता ले आना। लेकिन पश्चाताप की अग्नि में पूरा जीवन जलना पड़े तो जीवन में खुशी तो रिंचक मात्र भी ठहर नहीं पाएगी। इसलिए पश्चाताप अवश्य करें और उसको अपना जीवन साथी ना बना लें। बहुतों के केस देखने में आ रहे, गीता बहन ने युवकों की बात की, मेरे पास तो कम से कम 100 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है लड़कियों के शादी की, एक साल में 6 मास में दुखी होकर घर वापस आ गई, पूरा जीवन
आज का ज्वलंत समस्या है
और पश्चाताप की अग्नि में जी रही कि काश मैंने माँ बाप की मानी होती, काश मैंने सोच समझ के निर्णय लिया होता, मेरे प्यार ने मुझे अंधा बना दिया, मैंने उसके गुण अवगुण देखे ही नहीं, शादी की तो पता चला हो तो बहुत शराबी है, रोज मारपीट होने लगी, पहले दिन से कई कई होगा तो ऐसा हुआ, एक दिन रहने के बाद लड़की बात, अब एक दाग लग गया जीवन पर, माँ बाप भी बेचारे सिर छुपाए, अपना मुंह ढके, इधर उधर कहीं जा नहीं पाते हैं। तो ये जो निर्णय है, मनुष्य हर जगह अकेला खुद निर्णय नहीं ले सकता, गलत हो सकता है, विशेषकर ये जो मैरिज के निर्णय।
जी जी जी।
इसलिए हमारी भारतीय सभ्यता में माँ बाप, पहले तो देखो नाई और ब्राह्मण दोनों जाते थे देखिए, और उन पर इतना विश्वास किया जाता था। मैं बोला नाई क्यों?
हाँ,
बहुत बुद्धिमान होता है, वो सबके बाल काटता है ना, उसको कर्म शक्ति होती है, कौन कैसा है, उसके बाद निरंतर लोग आते हैं। तो इस कल्चर को जब तोड़ा गया तो ये मैरिज कष्टों का कारण बन गई है।
लेकिन समाज में आजकल यही चलन है, इसको खत्म भी तो नहीं किया जा
सकता। देखिए ये चलन बढ़ गई है क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ से भारत ने कॉपी कर ली है, लेकिन ये सत्य है कि भारतीय कल्चर इसको स्वीकार नहीं करती, इसलिए घर घर में इसके कारण शांति है, क्योंकि लड़के और लड़की किसी की सुनते नहीं है, और अगर वो बिल्कुल माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध करना नहीं चाहते, कर नहीं सकते, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। मान लो माँ बाप कहे नहीं, वो दूसरी जाति की है या वो गरीब है या वो ये है, तो वो डिप्रेशन में रहने लगते, करना तो उससे करना, नहीं तो नहीं करेंगे, तो एक नई समस्या शुरू हो जाती है। तो हमेशा देखिए, हमने ईश्वरीय ज्ञान लिया, फिर हम तो ऐसी किसी गलती से गुजरे नहीं है, पर ऐसे बहुत लोग आते हैं, भाई हमने बड़ी गलती कर ली थी, ये मिट नहीं रही है, तो शिव बाबा हमें सिखाते आए कि मुझे ये सब सुना दो जो तुमने किया, हल्के हो जाओ, मैंने ले लिया, तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम हल्के हो जाओ, भी लाइट, और अपने आगे के जीवन को एंजॉय करो। तो हमें ये देखना है कि अगर हमसे कहीं गलत निर्णय हुए हो जीवन में, हम अब पश्चाताप की अग्नि में ना जले।
जी जी। मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ भाई जी बीच में, कि देखो जो ईश्वरीय ज्ञान में है वो तो परमात्मा को सुना देते हैं, लेकिन जो दुनिया में है जिन्हें ज्ञान नहीं है उनसे भी कई बार गलतियां हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है, क्या उनके लिए आप ये संदेश देंगे कि वो अपने प्यार से अपने माँ को या बाप को भी सुना सके?
हाँ, देखिए ये भी कर सकते हैं, ऐसे कई बच्चों ने किया है। माँ से बहुत प्यार था, लड़की गलती कर आई, माँ को बताया साफ साफ। माँ का हृदय बड़ा होता है, उसने सब कुछ संभाल लिया, अपनी बच्ची को समझाया,
उससे अंदर हल्का पड़ा,
संभाल लिया उसको, और वो लड़की पूरा जीवन भर के लिए इस चीज से मुक्त हो गई। हम जो ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन परमपिता से है, हम उसको लिखते भी दे देते हैं या सुना देते हैं योग युक्त होकर, तो हमारी वो बातें खत्म हो जाती हैं। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी गलत निर्णय के कारण वो पास्ट हो गया ना, अब उस पश्चाताप की अग्नि में हमको नहीं जलना है, उससे कुछ अच्छी चीजें हमने सीख ली, आगे के लिए हम सावधान हो गए और अब एक नई उमंग के साथ, नई खुशियों के साथ अपने जीवन की इस यात्रा को सफल करें।
जी 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 जी, जीवन में कई बार गलत डिसीजन होने के कारण वर्तमान खराब हो जाता है, पास्ट में जो हमने गलत डिसीजन लिया है उसका वर्तमान पर प्रभाव पड़ने लगता है, वो देखने में आता है कि खुशी नहीं है, कार्य कर रहे हैं पर कार्य में मन नहीं लग रहा है, कोई बड़े से बड़ा कार्य हो या छोटे से छोटा हो लेकिन खुश नहीं है मन। इसके लिए हमें पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को एक बार फिर से रिवाइंड करके,
एक दबाव से महसूस होता रहता है हमेशा,
तो उसे हमें जो भाई जी ने कहा कि एक बार मेडिटेशन में हम बैठ जाए और अपने उन बातों को रिवाइज करें और सामने रखें कि आज से इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, अब से आज मैं अपना नया जीवन शुरू कर रहा हूँ और आज से मुझे हर कार्य उमंग उत्साह से करना है और कुछ भी कार्य मुझे मिलता है तो मन से करना है, क्योंकि कार्य को जितना हम महत्व देते हैं, अपने दिल से कार्य करते हैं, उतना वो हमारा सहयोगी बनता है। नहीं तो हम कार्य छोटा, अगर कोई कार्य छोटा है तो उसे हम उस नजर से देखते हैं तो उससे हमें प्राप्ति भी छोटी हो जाती है।
खुशी बनाए रखने के लिए खास करके जैसे आप बता रहे हैं कि पुरानी बातों को भूलने के अलावा एक नए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, जीवन में कुछ ऐसे सद्गुण का प्रयोग विकास करें जिससे हम पुरानी बातों को सहज भूलते जाएं। ये भाव है आपका।
मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है जिसमें एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कुछ बच्चों से एक कार्य करवाया, उन्होंने गुब्बारे मंगाए कुछ और कहा कि इन्हें फुलाओ, तो सबने फुला लिया, फिर उनको कहा कि अपना अपना ना एक नाम लिखो इस गुब्बारे पर।
अच्छा,
तो अपना अपना सबने नाम लिखा और 30-40 गुब्बारे थे तो सबको उठाकर एक कमरे में बंद कर दिए गुब्बारों को। फिर बाद में प्रोफेसर ने कहा कि आप सब लोग जाओ और अपने अपने नाम का गुब्बारा उठा दो, तो तेजी से गए सब, ये भूल गए कि मेरे नाम का तो मुझे ही मिलने वाला है, जो मेरा था वो मुझे ही मिलने वाला है, मेरे नाम का तो कोई भी नहीं लेगा, ये उनको ज्ञात नहीं था और सभी भागे तेजी से अंदर और सब अपना अपना ढूंढने लगे, तो किसी का किसी को मिल रहा है, किसी का किसी को, तो एक मिनट के अंदर ही प्रोफेसर ने बुला लिया कि चलो सब बाहर आ जाओ। सभी बाहर आ गए, गुब्बारे वहीं रह गए। फिर उसके बाद कहा कि अब जाओ और जिसको जो मिलता है ना वो लाओ और जिसका है उसको दो। तो वही कार्य करने में पहले बहुत हड़बड़ाहट थी, जल्दबाजी थी, और वही कार्य यदि हम सोच के समझ के करते हैं तो वो सरल और जीवन में खुशियां लेके आता है।
बहुत सुंदर भाई जी। थोड़ा सा आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे संजय भाई बताया कि जीवन में कई बार हम कार्य तो करते हैं लेकिन कार्य को अगर हम सुचारू रूप से करें तो भी वो खुशी प्रदान करती है।
बिल्कुल, कार्य की सुचारू रूप से करने के बाद ही तो सफलता मिलेगी
जी।
और हम ऐसे ही करने लगे, मान लो हमें कोई एक चीज बनानी है, उसके 10 पार्ट्स हमारे पास हैं, तो 10 के 10 को ठीक से जोड़ेंगे तब तो चीज बनेगी, और हम कोई कहीं जोड़ने लगे, कोई कहीं जोड़ने लगे तो वस्तु तो बेढंगी हो जाएगी। तो बिल्कुल सुचारू रूप से काम करने में, ठीक ढंग से उसकी शुरुआत करने में ही हम सफलता तक पहुंचते हैं और तब वो कार्य हमें खुशी प्रदान करता है। मैं निर्णय में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, हर मनुष्य के लिए है वो, कि अपने निर्णय भावुकता में न ले ले, बिना सोचे विचारे न ले ले, ऐसा नहीं फटाफट बहुत शांत
जल्दबाजी में ना ले,
बल्कि मैं तो कहा करता हूँ कि अगर तुम्हें जीवन के इम्पोर्टेंट निर्णय लेने हैं तो सवेरे जब उठो थोड़ा मेडिटेशन करो, मन शांत हो, तो तुम्हारी बुद्धि में परफेक्ट डिसीजन आएगा, वो बहुत कल्याणकारी होगा, लाभप्रद होगा, लेकिन तुमने फटाफट निर्णय ले लिया। जैसे उदाहरण है, बोस का पत्र आया किसी के पास, जब तक पत्रों का जमाना था। अब इस पत्र को पढ़ते इसको गुस्सा आ गया, गुस्सा आते ही फटाफट लिख देता रिजाइन, रिजाइन कर देता हूं। फिर दूसरा केस यही हुआ, बॉस का पत्र आया किसी को, उसको बहुत बुरा लगा, उसको भी गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने सोचा इसका उत्तर कल दूंगा। बस कल तक तो मन शांत हो गया, बॉस को एक अच्छा पत्र लिखा अपनी गलतियों की क्षमा याचना की, बात समाप्त हो गई। तो देखिए, हमें बहुत शांत चित्त मन से निर्णय लेने,
भावावेश में आकर के कोई ऐसा कर,
भावुकता बस लिया हुआ निर्णय हमेशा ही विध्वंसकारी होता
जी,
है।
जी 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 जी। जैसे कि भाई जी सुनाए कि वास्तव में जो है हमें कई कर्म तो हमें खुशी प्रदान करता है, लेकिन कई कर्म जो है कई बार दुख का अनुभव करा देता है। तो कर्म में ऐसी क्या बात का ध्यान रखें जिससे हमारा जीवन सदैव खुशी में हम नाचते रहें, खुशी प्रदान करता रहे।
एक तो भाई जी ने जैसे अभी बताया कि जो भी हम डिसीजन ले बहुत ही हबड़ तबड़ में, चलती बाजी में, आवेश में, भावुक होकर न ले, बहुत ही शांत चित्त से, जब आप बहुत खुश हो, आनंदित हो, तब आप अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन ले। और डिसीजन में अगर आपके कोई अपने वेलविशर है तो उनकी राय जरूर ले, क्योंकि देखिए एक बुद्धि का कमाल एक होता है, और 10 बुद्धि मिलकर के 10 गुना कमाल कर सकती है। तो अपने जो वेलविशर है, हमारे शुभचिंतक है, उनके सामने हम अपना डिसीजन जरूर रखें, उस पर प्लान करें, प्लानिंग करके बड़े इत्मीनान के साथ उसको अप्लाई करें, तो 100% वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े होशो हवास में सोच समझकर जो डिसीजन लेते हैं, वहां भी हमें कहीं कहीं लॉस हो जाता है। जैसे कोई कंपनी का MD है, उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कंपनी के फेवर में, लेकिन अहित हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, रिपोर्टेशन खराब हो गई कंपनी की, मार्केट में नाम खराब हो गया। अब वो MD बड़ा परेशान है कि मैंने तो बहुत सोच समझ करके, मैंने तो बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए ये डिसीजन लिया था, अब सारा स्टाफ परेशान, MD परेशान, कंपनी का नाम खराब हो रहा है चारों तरफ। ऐसी स्थिति भी लोगों के पास आ जाती है कि हमने अच्छे के लिए कुछ किया था पर बुरा हो गया, हमारे फेवर में नहीं हुआ। उस समय हम डिप्रेशन में जाने की बजाय, नुकसान को, लॉस को बार बार सोचने की बजाय, ये सोचे कि हम ही क्रिएटर हैं, हमने ही इस कंपनी को खड़ा किया है अपनी सूझबूझ से, और वो सूझबूझ अभी भी हमारे पास है। तो यदि हम बार बार लॉस लॉस, नुकसान नुकसान करते रहेंगे, तो जो हमारा स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं जो है होपलेस हो जाएगा। हम तो होपलेस है ही, लेकिन वो भी होपलेस हो जाएगा। तो जो हो गया सो हो गया, उसे एक्सेप्ट करके हम नुकसान में भी क्या फायदा ढूंढ सकते हैं, अपनी एनर्जी वहां लगाएं कि जो लॉस हो गया वो बीत गया, अब उससे हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, लेकिन इस लॉस में भी हम बढ़िया से बढ़िया, बेटर से बेटर क्या फायदा निकाल सकते हैं। 100% लॉस में अगर मुझे 20% भी फायदा हो जाए, अगर मैं गहराई से देखूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो। तो हम नुकसान को ज्यादा फोकस ना करके, लॉस को बार बार गा गा करके उसका माहौल हैवी करने के बजाय, हम उसमें फायदे की सोचे कि इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं, और उस फायदे पे जब हम फोकस करेंगे तो हमें चारों तरफ बेनिफिट ही नजर आएगा, और एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग, उत्साह हमारे चारों तरफ विराजमान हो जाएगी।
बहुत सुंदर सुंदर जानकारियां आप तीनों से मिली, हमें बहुत सुंदर अनुभव हुआ कि आप तीनों के विचार हमारे दर्शकों के लिए सचमुच बहुत आनंद प्रदान करने वाला होगा। तीनों का पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, जीवन को कैसे जीना है, जीवन में आनंद रूपी रंग को कैसे भरना है, उसमें खुशी को कैसे रंगना है, इसका विशेष आज हमें ज्ञात हुआ कि सचमुच मनुष्य के अंदर कभी कभी कुछ विकृतियां आ जाती है, कुछ भूल का प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बीत गई, भूलें होती है, मनुष्य गलतियों का पुतला है ऐसे कहा जाता है, उन बातों को भूल जाए, अब एक नया दिशा दे, एक नए विचार के साथ, एक नए तरंग के साथ, नई खुशियों के साथ अपने जीवन को आरंभ करें। हमें ये देखना है कि वास्तव में मुझे जैसे सब लोग चल रहे हैं वैसे नहीं चलना है, एक नया दिशा देना है। क्या हम अपने जीवन को जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने देना चाहते हैं, जैसे हम सभी के लिए और सब चीज आवश्यक है वैसे खुशी भी आवश्यक है। किसी ने कहा है कि जब आप फोटो खिंचवाते हैं तो थोड़ी सी मुस्कुराहट आपकी तस्वीर में चार चांद लगा देता है। तो सचमुच अगर आप सदैव मुस्कुराते रहेंगे तो आपके जीवन रूपी सफर बहुत सुहाना बन जाएगा। इन्हीं सुभाषाओं के साथ नमस्कार।